तन्मयतया सर्वो भूतेषु तं सर्वभूतहृदयं विमान् सवैवास्मि सवैवास्मि न जीवामि सयाति न इति दिव्यं राधे तं नयमान्। कृष्ण ने इसको सबसे पहले प्रकाशित किया व्यास जी के हृदय में और उन्होंने इसको जगत में प्रकाशित, उन्होंने भी नहीं किया बल्कि सुखदेव गोस्वामी के द्वारा इसका प्रकाश किया। अक्षरात्मक रूप में उन्होंने संकलन किया प्रतिकरण, जैसे कृष्ण का आविर्भाव स्वभाव है वैसे भागवत का आविर्भाव और तिरुभाव होता है। उनको कोई बनाने वाला रचने वाला लिखने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं, वो खुद ही जैसे कृष्ण स्वयं है ऐसे ये बात। गीता को किसने लिखा भाई, तुम बतलाओ से गीता किसने लिखी? हाँ वैसे प्रकाश किया, पुराण इत्यादि सब नित्य हैं, ऐसे ही समझो कृष्ण के समान ये सब चीजें, इनका कोई लिखने वाला नहीं है। स्वयं जी को समय समय पर प्रकाशित अपने आप होते हैं और अपने आप फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। अच्छा कोई बतलाओ तो कहाँ तक हुआ था कि मैं बतलाओ अचिन सर कल कहाँ तक प्रसन्न हुआ था? इसका मतलब ये सुनते नहीं है, सुनते हाँ गोपियों के चरण रज इसके बाद उनका हो गया। इसके बाद में ऐसे ही बंद हो जाता है श्याम भाई, क्या हो जाता है
क्या बोल रहे
अब कृष्ण के साथ में
लेट है जिस तरह से हो
जाता कभी आता है कभी आता है ठीक हो रही अब कृष्ण उन सखाओं को लेकर इसको ठीक करवा लो दो बार में गायों को पेड़ों की छड़ियां में रखकर अब भोजन इत्यादि की का वर्णन कर रहे हैं। पहले स्नान का वर्णन कीजिए, कैसे बड़ी क्रीड़ा के साथ में विलास के साथ में स्नान करते हैं और फिर इसके बाद में
दोपहर का भोजन ग्रहण कर रहे हैं, ये सब किस लिए वर्णन कर रहे हैं?
वर्णन करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि इन कथाओं को सुन करके पढ़ते हरिनाम करते समय दोपहर में जो हरिनाम करेंगे इन लीलाओं का स्मरण करें, कथा सखा युक्त जो सखा भाव वाले कोई भी संसारिक बात हरिनाम करता है समय में न आए। हम लोग ऐसा हरिनाम नहीं करते, किंतु रूप सनातन जी ऐसा ही करते हैं, कड़ गोस्वामी लोग या हमारी परंपरा में जितने भी आचार्य सन्नाम रूप चरिता आदि सुखद नाम क्रमेण रसना मनसी नाम करते समय भगवान की सतत समय की लीलाओं का स्मरण करते हुए हरिनाम करते करते कुछ दिनों में आवेश हो जाएगा। आज जिस समय आवेश हो जाएगा उस समय हरिनाम छूटेगा नहीं और तरह तरह के विचित्र लीलाएं अपने आप हृदय में स्फूर्ति होंगी, उसमें स्मरण करने की जरूरत नहीं होगी कष्ट। अब यह स्मरण करने में मन में नहीं जाएगा और अपने आप धारा प्रवाह से वो सब चीजें आती। मध्यान्हिकम भोजनम प्रकल्प विशेष कृष्णानुसंधि ने मनुज्ञ गोपाई समंग मंगले तो निरीक्षे न्यवेशय तो अग्रजम एव मध्य। अब दोपहर हो गया, 12 बज गया, अब सभी लोग भजन करने के लिए यमुना के किनारे कुकुल में जहाँ पर सुंदर सुंदर वन उपवन है, सुंदर सुंदर छाया है, यमुना के विस्तृत उपवन में ये लोग गायों को एक जगह छाया में बैठा दिया, वो बैठ करके बागू करने लगे और ये सब सारे गोपाल बालक कृष्ण को मध्य में रखकर मंडलाकार रूप में एक मंडली दो मंडली तीन मंडली इस तरह से सौवीं हजारवीं लाखवीं मंडली बहुत दूर तक लाखों सखा लोग बैठे। उस समय में विस्तीर्ण कृष्णा पुली ने कृष्णा यमुना के विस्तीर्ण क्यों सखा लोग दो एक तो है नहीं लाखों आदमी जब बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे? हम लोगों में 8-10 हजार आदमी होते हैं, 15 हजार आदमी होते हैं, गंगा के किनारे जगह नहीं मिलती है बैठने के लिए और ये लाखों सखा लोग बैठे हुए हैं, इसलिए विस्तीर्ण इलाका चाहिए। मनुज्ञ मैंने कई कदम्ब के पेड़ हैं, छैया लगी है, कई सवाल के वृक्ष हैं, कई आम्र वृक्ष हैं, कई कटहल के हैं, कई सीख हैं, कई सारे फलों के वृक्षों से लगा हुआ वो वृंदावन भूमि है। ऐसे मनुष्य गोपाई समंग मंगले तो मंगल के की कौन है? कृष्णचंद्र जी निविष्ट से भोजन करने में निविष्ट हो गए, सखा लोग भी निविष्ट हो गए, नवेश तो अग्रजम कभी अपने आप कभी बलदेव जी के साथ में परिवेशन भी करते हैं, अपने भी खा रहे हैं उनको भी खिला रहे हैं, कभी हंस रहे हैं कभी हंसा रहे हैं। लाखों जो मंडलियां हुई वो उसमें मंडली में कृष्ण के पीछे भी जो बैठने वाले हैं वो देख रहे हैं कि मैं कृष्ण के समीप, अगल बगल में जो बैठने वाले वो भी देख रहे हैं ये कृष्ण के समीप, बहुत दूर बैठे हैं वो देख रहे हैं ये कृष्ण के समीप, कृष्ण के साथ ही मैं ही खा रहा हूँ, मैं ही हंसे कर रहा हूँ, दिल लगी कर रहा हूँ, कृष्ण हमारे साथी में खाओ खिला। ये कैसे संभव है? योग माया के द्वारा ये संभव है। कृष्ण बड़ी खुशी के साथ में यहाँ से वहां भी जाते हैं और सभी लोग देख नहीं पाते, ये भी ऐसा है। अब कृष्ण बीच में बैठे हैं और सब लोग सखाओं को खिला रहे हैं खा रहे हैं, ये भी एक तरह का ऐश्वर्य है, किंतु किसी ने नहीं देखा ऐसा, इसलिए अस्पष्ट नहीं है। अस्पष्ट तो है किनके लिए? नारद इत्यादि के, किंतु गोपालकों के लिए ऐसा अस्पष्ट नहीं। क्यों? वो सभी यही देख रहे हैं कि हम कृष्ण के साथ में बैठे हुए खा रहे हैं। जो ध्यान करेगा ना इस लीलाओं का और हरिनाम करेगा, वो भी इस दल में शामिल हो जाएगा। वो भी देखा कि मैं भी कृष्ण के साथ में खा रहा हूँ, खिला रहा हूँ। जो जैसा जिस रस का उपासक है ऐसे ही लीलाओं का स्मरण करेगा। इसी प्रकार से हमारे गोस्वामी लोग गोपी भाव से उसमें आविष्ट होकर के दिन रात अस्त प्रहर अपने भजन के स्थान से हटते नहीं। मन भी उगता नहीं था, खाने की इच्छा नहीं थी, पानी पीने के भी इच्छा नहीं थी, उसमें लगे थे। एक बार तो श्रीनिवास आचार्य दिन रात दिन और रात बस बैठे ही रह गए। लोगों ने समझा कि मर गए, क्या हो गया। तो उनके शिष्य थे रामचंद्र अभिराज, उनके पास में गए। वो जल्दी से आकर के देखा, नहीं युद्ध मरे तो नहीं, ये तो समाज युद्ध है, इसमें ये कृष्ण लीला में प्रवेश होते हैं, शरीर यहाँ पर पड़ा। बस अपने लिए समाधिस्त होकर कहा कि अभी ये शरीर को छेड़ना मत, जब तक हम नहीं लौटते हैं तब तक यहीं पर रखा था। और वृंदावन में चले, वृंदावन में खोजा, पता लगा कि कहाँ है। पता चला कि यमुना में विहार कर रहे हैं। बस वहाँ पर पहुँचे, देखा सभी लोग कोई एक चीज खोजने में व्यस्त हैं। ये भी चक्की रूप में वहाँ पर उपस्थित होकर के और डुबकी लगाई और उनके हाथों में एक नाग का लेकर दिखो, कहाँ मिला? कमल की जड़ में लेकर मिला। वो खोजते खोजते सभी लोग हार गए, किसी को नहीं मिला। और वो कमल की जड़ में वो फंसा हुआ, न नीचे मिट्टी में है न ऊपर है, बीच में ही अटका। बस उनके हाथ में मिल गया और लेकर के इन्होंने किसको दिया? गुरु रूपी सखी उनको दिया, उन्होंने रूपमंजरी को दिया, उन्होंने विशाखा जी को, उन्होंने दिया ललिता जी, ललिता जी ने ला कर कभी किसने पाया तो उन्होंने कहा जी सखी, बस उसको पुरस्कार दिया। इसके बाद में लीला समाप्त हो गई, बस वहां से लौट करके इस शरीर में ऐसे आविष्ट। ये लोग सिद्ध महात्मा, कृष्णदास कविराज गोस्वामी रूप सनातन इत्यादि सभी सिद्ध महात्मा, हम लोग उन्हीं के पथ पर चले। इसलिए नाम करते 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 आदमी आविष्ट हो जाता है। जब तक आवेश नहीं तब तक भजन नहीं। जैसे श्रवण में आवेश हो जाए, कीर्तन में आवेश हो जाए, कीर्तन में आवेश हो जाए और सुनते हुए स्मरण, स्मरण करते भी आवेश हो जाए, शरीर की शुद्ध बुद्धि, ये सब उत्तम महाभाग है। मतलब भागवत चेष्टा करके उनका स्मरण करता है, किंतु आविष्ट उतना नहीं हो पाता। जब हम उत्तम अधिकारी जैसा होने लगता है तब आविष्ट। कनिष्ठ अधिकारी जो है उनसे तो इसका कोई संबंध नहीं। कनिष्ठ मध्यम में भी मध्यम, कनिष्ठ मध्यम उत्तम, कनिष्ठ में जो उत्तम है ये सब है। और मध्यम में मध्यम जो है इनका चिंतन करने की चेष्टा करेंगे किंतु उनका होगा बाधा जी, और इनके अंदर में भी स्फूर्ति नहीं होगी। मध्यम के जो कनिष्ठ है बहुत चेष्टा करने पर याद होगी फिर भूल जाएंगे। मध्यम कौन है? वैष्णवों के जो प्रकार हैं वो जान करके उत्तम मध्यम कनिष्ठ वैष्णवों का विचार कर सकते हैं। ये मध्यम है, कनिष्ठ है, ये विचार कर सकते हैं। सिद्धांत तत्व का ज्ञान उनमें आया है, कृष्ण तत्व, जीव तत्व, माया तत्व, भक्ति तत्व, धाम तत्व, ये सब का विवेचन जिनके हृदय में उपस्थित हो गया है, विचार कर सकते हैं, इनका नाम। और उत्तम भागवत क्या है? ये सिद्धांत तत्व ज्ञान भी और दृढ़ श्रद्धा भी, वो लोग कनिष्ठों की श्रद्धा लपलपाती है। लपलपाना मैंने प्रदीप जैसे हवा के चौक में कभी इधर उधर कभी बुझ भी जाता है, ऐसे कनिष्ठ लोग अभी हैं। कोई जांच फाट किया तो घर छोड़ करके मठ मंदिर साधुओं का संग छोड़ करके घर में चले जाए, ये सब है कनिष्ठ अधिकारी। अब सुनिए, थे यहाँ पर मध्यान्ह सनातन गोस्वामी टीका में बता रहे मध्यान्ह काल में भोजन, ये जैसे हम लोगों का है करीब करीब 3 बार भोजन होता है, सवेरे कलेवा होता है, दोपहर का और रात में शाम को कुछ थोड़ा सा के लिए, किंतु वो भोजन तंत्र करना पड़ेगा, ग्रंथ नहीं होता शाम को। शाम को कब? हम लोग का ये ठीक है, हम लोग की जो पद्धति हम लोगों के मठों में गौड़ियों मठों में चलती है वो ठीक है, कोई से रात को खाते ही नहीं, बहुत से ऐसे साधक जो रात में नहीं है। अब हम देखेंगे कि कृष्ण कब कब क्या लेते हैं। सवेरे में कलेवा करके यशोदा मैया उनको खिला देती हैं और वो जंगल में गौवा चराने के लिए चले जाते हैं। फिर दोपहर में क्या खाते हैं? मैया भरपेट भोजन के लिए व्यवस्था करके भेज देती है जंगल में, वहां पर खाते और फिर लौट करके वहां से शाम को गैया इत्यादि का दोहन करके और खूब सुंदर से स्नान करके सब उपानंद आनंद महाराज और जितने उनके भैया हैं, जितने उनके पड़ोसी इत्यादि हैं, सबको लेकर के रात में बैठते हैं भोजन करते हैं। उसमें भोजन का एक रंग ही अलग तरह का होता है। 7:30, 8:30, 8:30 तक भोजन करके नंद बाबा के दरबार में बैठ जाते हैं और वहां पर स्निग्ध कंठ मधु कंठ तरह तरह की कथाएं सुनाते हैं, मानो आज ही ये लीला संघटित हुई। और थोड़े देर रहने के बाद जो यशोदा जी बुलाती हैं, जैसे गैया डकारती हैं बिना बछड़े के, ऐसे डकार करके उनको बुलवाती हैं और अपने बिस्तर पर लेकर के सुला देती हैं। 9:30 बजे के अंदर में सो जाए ये शादी नहीं, दो परसेंट वही भोजन के बाद में सवेरे कलेवा करके पूरा कलेवा करते हैं, थोड़ा नहीं पूरा कलेवा 9 बजे के करीब में पूरा कलेवा, और फिर दोपहर वाला कम होता है और इसी समय में भोजन करके थोड़ा सा कितना 8 घंटा 15 मिनट 10 मिनट। इसलिए हम लोगों से प्रतिज्ञा कराई जाती है कि ब्रह्मचारियों को माँ दिवा सप्ती दिन में मत हो, और हमारे ब्रह्मचारी जी दोपहर में देखता हूँ तो कोई किसी का पता नहीं कहाँ है कहाँ है। पहले घर नहीं था तो वो अच्छा था, सब लोग हॉल में बात कर रहे थे, अब सभी लोग आराम के साथ, अब घर में पंखे लग गए यहाँ पर भी नहीं, आराम से अब कूलर भी आ गया है, बड़े आराम के साथ में भोजन के बाद में 12 घंटा विश्राम करें। 12 घंटा कितना होता है? विश्राम कर और रात में भी 12 घंटा तो पर में मत तो यदि भजन करना चाहते हो, रोगी लोगों को छोड़ दो, असमर्थों को अधिक से अधिक 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट विश्राम करो, को भी सो मत, और इसके बाद में हरि कथा अनुशीलन करो, ग्रंथ पढ़ो, तब भजन होगा। बस कीर्तन के समय में जितने काम आगे कीर्तन के समय में सवेरे और पाठ के समय में, ये भजन विरोधी है, इसलिए इन लीलाओं को दिया गया। जैसे जैसे ये लीलाएं हैं उसी रूप में हम लोग अपना साधन भजन करें। आराम करने का जगह मठ नहीं है, भजन साधन करने का स्थान है। कभी कभी सवेरे का भोजन नहीं हो पाता, विशेष प्रोग्राम होते हैं, उसमें भोजन सामग्री वन में जहां पर उनके जाने की बात होती है वहां पर मैया पिताजी भेज देते हैं, वो लोग भिक्षे होते हैं वो लोग वहां पर उपस्थित कर देते हैं। किसी समय श्री कृष्ण वन में ही जब इच्छा होती है वन्य भोजन करने की तो अपने अपने साथियों से ले लेते हैं या गैया को लेकर के चले जाते हैं, उनके नौकर जाकर उनको वहां पर उपस्थित कर देते हैं। एक समय हम लोग सुनते हैं अशोक वृक्षों से लदा हुआ वृंदावन और मथुरा का बीच के भाग में वो गोचारण करने के लिए जाने की बात थी भांडीरवन, और माता पिता ने भेज दिया वो कहाँ
भांडीरवन,
वो चले गए भांडीरवन में, और इनकी गाय घर में मुनि तो चली आई मथुरा और वृंदावन के बीच में यहाँ पर की ब्रह्म घाट
छात्रों
वहाँ पर केवल अशोक वृक्ष और कोई पेड़ ही नहीं है, आम लीचू अनार
कटहल
ये सब कोई भी पेड़ नहीं, केवल अशोक, उसमें फल नहीं लगता, फल लगते हैं वो खाए नहीं, ये बीज जैसे होते हैं। बड़ी भूख लगी और समय कृष्ण ने कहा कि भूख लगी अब यही तो मांग लो, हमारा खाना तो भोजन से ही आएगा नहीं, तो इस बीज पत्नियों के यहाँ मांगने गए। उस लीला को आप लोग सभी जानते हैं। दशम स्कंद में ये सब का वर्णन विशेष रूप में किया गया है। स्वयं च लीला चित गत्या भ्रमण विचित्रम परितपुरैव नीतानि तत्रा अलयतो अद्भुतानि भोज्यानि रेमे परिवेशयन् परः। गोपाल देव स्वयं उस समय कितनी उम्र होगी अभी पौ घंट उम्र है उस समय की बात, 5.5 से 8 के अंदर में स्वयं लीला की भांति नट की भांति नित्य गति से चलते हैं। चलते हैं तो कैसे, उनका गमन ही नित्य है। छोटे छोटे बच्चे कभी फुदक फुदक कर चलते हैं, सीधे नहीं चलते, इधर से चलते हैं, फुदक फुदक करके इधर से चलते हैं, ऐसे ऐसे ने? और कोई चीज खाने को मिल जाए तो ऐसे ऐसे ले लेते हैं और फुदक फुदक करके चलते हैं, कभी नित्य रूप में चलते हैं। इस प्रकार से भ्रमण करते करते स्वयं उन भोज्य द्रव्यों का क्या भोज्य दरबार, रोटी मालपुआ कभी चावल कढ़ी आचार तेली का आचार, कभी कढ़ी कभी पकौड़ी, तरह तरह की पकौड़ी, कृष्ण की पकौड़ी किस चीज में बनती है,
आलू है बेगन है काफी
आलू होता था कि नहीं, वहाँ पूरी में तो नहीं लगता है,
पकौड़ी सब लिखा है
लिखा है पकौड़ी सब ना बोल की बोले पूरा पूरा बैंगन ये सबके पकौड़ी बनती है, बहुत सुंदर पकौड़ी। अन्य तो बक फूल कभी फूल होते हैं किसी चीज का ले, कुमड़े का फूल, कुमड़ा मैंने काशी फल का लाल लाल फूल होते हैं ना, उनकी पकौड़ी बनती है। और सब चीजें पकड़ ब्रज की देवियां इसमें माहिर होती हैं, मिर्च का नहीं, मिर्च की पकौड़ी नहीं बनती थी, क्यों कृष्ण नहीं खा सकते, कृष्ण कभी पकौड़ी के समय कोई मिर्च की चीज नहीं खाते, महाप्रभु भी नहीं खाते ये मिर्च कभी नहीं। इसीलिए जितने भी ठाकुर मंदिर हैं प्रसिद्ध प्रसिद्ध वहां पर मिर्च का भोग नहीं लगता। हम लोग अपने इच्छानुसार उसमें कर लेते हैं, वो लोग राबड़ी मलाई मीठी चीज नमकीन चीज तरह तरह के चटनी अचार ये सब लेंगे। बल्कि कभी कभी कृष्ण चतुराई करके पकौड़ी के अंदर में कहीं से मिर्च ले करके और दे करके मधुमंगल को दे देते
और नीम का
और वो समझता नीम का पत्ता, वो भी नीम का पत्ता फलुआ और उसमें भर करके दे देते, खिलाते खिलाते अच्छे अच्छे दे रहे हैं और बीच में एक और वो भी दे दिया जिससे कि कोई
समझ
ध्यान ना सके। अच्छे अच्छे दिया खूब खाने लगा, खूब आराम आराम के साथ आनंद के साथ में बगल बजाते हुए इतने में एक ऐसी पकौड़ी दी, बस एकदम सुतु करते हुए उनके गाली देता हुआ सारे धोते इत्यादि करते हुए लठिया लेकर के दौड़ पड़ा या निकाल दिया जनेऊ अभी संपात करने लगा। इस तरह से तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। ये देखिए जिसके ये विश्व ब्रह्मांड के जो प्रभु हैं निर्विशेष जो योगी लोग हैं ब्रह्मवादी ज्ञानी लोग उनके लिए क्या है, ये निर्विशेष ब्रह्म है। और इतम ब्रह्म सुखानुभूत्या दर्शन गतान
पर
और किसी के कहते हैं पर देवता हैं, योगियों के पर देवता हैं, और माया के जो मनुष्य हैं उनके लिए लड़के जैसे साधारण मरणशील लड़के जैसे दिखते हैं, जदवंशी भी कैसे हैं सखा जैसे हैं, सखाओं के साथ में इनको बाल बालकों के साथ वही नरातुशील पर ब्रह्म इनके साथ में तरह तरह से खेल करते हैं, इनका कितना सौभाग्य है। ये लोग ये समस्त ऋतुओं में उत्पन्न होने वाले फल पुष्प से लदे हुए वृंदावन दिव्य दिव्य चरित्र विचित्र प्रकार के वृक्षों से संग्रहित करके सुस्वादु फलों को यथारुचि खा रहे हैं, दूसरों को भी दे रहे हैं। पीलू फल, कैंस का फल, कैंस फल देखा है, बेल की तरह होता है बड़ा कड़ा और वो खट मीठा होता है, पकने पर कच्चे होने में खूब खट्टा है और पक जब जाएगा तो वो बच्चे लोग खूब खाते हैं, उसमें नमक वमक दे देते हैं, तेल भी दे देते हैं, तो वो तेल और पहले जंगल में कहाँ से मिलेगा ऐसे सब, और उसी का गेंद बना करके खेलते हैं उसी से। रसा आम पेड़ों में लगे हुए हैं, पेड़ों का सौभाग्य है, एकदम फल फूल से सब भर जाते हैं। पेड़ पर ही पका हुआ आम का फल यदि हो तो कैसा लगे, बहुत ही ताल, ताल माने ताल वृक्ष, उसमें होता है एकदम सफेद सफेद, इधर में शायद नहीं मिलता है, और ताल का पका हुआ फल बहुत ही सुंदर सुगंध वाला मीठा है, उसको हजम करना सहज नहीं है, बहुत ही सब दिव्य पके हुए सुंदर बेल, बदर बदरी के लंबे लंबे खूब सुंदर सुंदर फल, आमलौकी, आमलौकी माने आमला, फलों का राजा है श्री ताजी आमलौकी, 10-20 आम बराबर एक आंवले के भी बराबर नहीं होगा, उनसे जो लाभ होगा ना 10 आमों से, आंवला एक खाने से उसका फल अधिक है, पुष्टिकारक हजम कारक शक्ति वर्धक और सब प्रकार से, इसलिए आम दान की बात नहीं है किंतु आंवला दान किया जाता है। आम के नीचे भोग रंधन इत्यादि का विधान नहीं किंतु आंवले पेड़ के नीचे कार्तिक के महीने में उनको जनेऊ पहनाकर उनके नीचे एक महीने तक का व्रत करते हैं, ये कार्तिक में, और उनकी पूजा करते हैं, एक महीने के बाद में वहीं पर रसोई बना करके सब लोगों को वितरण किया जाता है। साधारण ये समर्थ ब्राह्मणों के लिए कर, और वैष्णव लोग क्या करते हैं, वृंदावन में जगन्नाथपुरी में नवतीर्थ धाम में किसी तीर्थों में विशेष करके वृंदावन के धाम में जमुना के किनारे ये व्रत नियम जापन करते हैं।
हम लोग तो
नारियल पन कटहल दक्ष माने अंगूर केले नारंग सीलू कबरी माने सेठी
करी करी
करी खजूर खजूर आम दानी दानी माने अनार, ये सभी पक्के फल पके हुए पूरे अपने खा रहे हैं दूसरों को खिला रहे हैं, तथा मीठे मीठे फल आस्वादन करके, मीठा आम है खूब सुंदर रसाल अपना चीसा और कृष्ण के मुख में दिया। यदि कुछ खट्टा हुआ तो उसको लेकर के फेंक दिया, कृष्ण को नहीं दे दिया। इस तरह से अपना उच्छिष्ट फल इत्यादि सब कृष्ण को खिला रहे हैं। हनुमान जी नहीं कर सकते ये, नंद बाबा का कोई भी दास ऐसा नहीं कर सकता। भीष्म पितामह इत्यादि लोगों के लिए, उद्धव के लिए ये संभव पर नहीं, ये किसके लिए संभव है? कथा से यशोदा जी अपनी गोदी में लेकर के कृष्ण को, लाला को अपने खा रही हैं, या नंद बाबा और उनको दे करके और अपने भी खा रही हैं, फिर उनको खिला रही हैं, कभी उनको खिला रही हैं, पर इनके लिए संभव है। अच्छा, गोपियों के लिए क्या होगा? वो खिला सकती हैं कि नहीं अपना जूठा? कृष्ण जी सखा के साथ में खाते हैं और गोपियों के साथ में तरसते हैं, क्या क्या बताया? तरसना मैंने क्या, ये थोड़ा सा दे दे, मुख से लाल टपकने लगे। गोपियां ऐसा जी नहीं देती, कभी अभी कुछ तपस्या कीजिए तो सब देंगे। तब हाँ, चलाती चतुराई के साथ में धनिष्ठा इत्यादि के माध्यम से, वैसे ये सखियां भी धनिष्ठा के माध्यम से यशोदा जी अच्छे अच्छे अन्न अनिवेदित उनके लिए देती हैं। और धनिष्ठा जी क्या करती हैं?